पत्र कैसे लिखें। सर पत्र कैसे लिखें ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन जब पत्र लिखने की बात आती है ना तो थोड़ा सा कतराने लगते हैं या फिर कहते हैं कि तुम लिख दो तुम लिख दो। तो आज इस माध्यम से हमारे शिक्षार्थी तो निसंदेह सीखेंगे, तो चलिए अब जानते हैं कि पत्र कैसे लिखें।
जी सबसे बड़ी बात तो यह है पत्र लेखन में
जी
कि आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से जो एक संवाद बनता था दो व्यक्तियों के बीच या आप कहें कि दो मित्रों के बीच
जी
या सगे संबंधियों के बीच, वो एक तार टूट गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और उसका स्थान आजकल व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। लेकिन पत्र का जो स्वरूप होता था, शायद बहुत से बच्चे अभी जो सुन रहे हैं उन्हें नहीं मालूम होगा कि लोग 20-20, 25-25 साल तक पत्रों को संभाल के रखते थे।
बिल्कुल बिल्कुल,
किसी भी पत्र को फेंकते नहीं थे। और जो साहित्यकारों के पत्र हैं वे तो सब मुद्रित हुए हैं।
मुद्रित हुए हैं जी,
क्योंकि उस पत्रों का महत्व यह है कि पूरी एक विधा के रूप में उसको स्थापित किया गया। अभी रामविलास शर्मा जी का देख रहा था मैं, उनके पत्रों का संग्रह निकला है। उन्होंने जिन जिन साहित्यकारों को पत्र लिखा उसमें उनका पूरा साहित्य दर्शन, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, उनका दूसरे के प्रति जो एक आदर है, सब कुछ प्रकट होता था। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, शिक्षार्थी बहुत बार केवल नकल करते हैं और सोचते हैं कि उसका ढांचा बना दिया पत्र बन गए, ऐसा नहीं है। पत्रों के अनेक प्रकार होते हैं, उनको समझना चाहिए। हर पत्र की अपनी अलग विशेषता होती है। तो इस पाठ को रखने का लक्ष्य यही है कि आप पत्र क्यों लिखे जाते हैं ये समझ सकें, पत्र की विशेषताएं बता सकें, उनके अलग अलग भेद बता सकें, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में अंतर बता सकें और कौन कौन से उसके अंग होते हैं वो भी बता सकें। और अगर बच्चे जब आगे नौकरी में जाएंगे
जी,
तो वहां पे कार्यालय में पत्राचार होता है,
बिल्कुल
सारा काम उसी के माध्यम से होता है, तो उसे भी जानना जरूरी है।
जरूरी।
तो सबसे पहले हम ये जाने कि पत्र लेखन का प्रयोजन क्या होता है। जैसा मैंने शुरू किया कि विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है और हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचाते हैं।
जी,
पत्र एक पुल का काम करता है दो व्यक्तियों के बीच, दो संस्थाओं के बीच, और ये ऐसी कला है जिसमें हम अगर पारंगत हो जाएं तो न केवल आम जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बहुत सफल होंगे।
जी,
आप देखेंगे कि नौकरी में भी उन लोगों को ढूंढा जाता है जो अच्छे पत्र लिख सकते हैं, है ना, अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो पत्रों का एक विशेष महत्व होता है और अच्छे पत्र जो होते हैं उसकी बड़ी विशेषताएं भी होती हैं। केवल पत्र लिख देना नहीं, उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए, जैसे संक्षिप्तता, ब्रीफ हो, छोटा हो, है ना। अगर आपने 5 पेज का पत्र किसी को लिख दिया तो वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन संक्षिप्तता में बात सारी आ जाए आपकी, आप जो कहना चाहते हैं
जी,
और सीधे सीधे कही जाए बात, है ना। बहुत लोगों को आदत होती है घुमा फिरा के विस्तार में कहने की, पत्रों में उसका अवकाश नहीं होता,
अवकाश नहीं होता जी।
दूसरी सरलता है, अगर आप आम जीवन की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, छोटे छोटे वाक्य नहीं बनाते हैं, छोटे अनुच्छेद नहीं लिखते हैं, तो आपका पत्र कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। क्योंकि लक्ष्य क्या है पत्र का, दूसरे तक को कम्युनिकेट करना, अपनी बात
करना जी,
है ना। और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है सहजता। सहजता का मतलब होता है कि आपको पढ़ने में आनंद आए, पत्र आप पढ़ें तो एकदम सहज रहें, ये नहीं आपको वो बुद्धिमत्ता लगानी पड़े कि कहना क्या चाह रहा है, है ना। तो उसमें सहजता होनी चाहिए। और औपचारिक पत्र मान लीजिए बड़े भाई बहन को आप लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, वहां तो ऐसे ही बहुत ही प्रेम भाव होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए।
जी।
और चौथा तत्व है प्रभावशीलता। अब आप देखें कि एक ही बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो पत्र एक ऐसा जरिया होता है जहां आप प्रभावकारी तरीके से अपनी बात करके दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। वहां ये जरूरी होता है कि आप एक विश्वास पैदा कर सकें पत्र से। और जैसे एक संस्कृत में बड़ा अच्छा एक वो कहानी सुनने को मिलती है कि एक राजा था, तो उसने दो बेटे थे, तो वो सोच रहा था कि किसको राजगद्दी दी जाए। उसने कहा कि दोनों को बुलाता हूँ। दोनों को बुलाकर और सामने एक वृक्ष था जिसमें पत्ते नहीं थे।
अच्छा।
तो उसने कहा कि दोनों से कि तुम बताओ ये सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो बड़े वाले ने कहा कि शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे, सूखा हुआ वृक्ष सामने खड़ा है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि नीरस तरुरी विलसति अग्रे, रस से विहीन वृक्ष है लेकिन सामने विलास कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो एक ही पेड़ को देखकर दो अभिव्यक्ति हुई,
दो अभिव्यक्ति हो गई।
तो राजा ने छोटे वाले को राजगद्दी दी कि इसके अंदर अच्छे भाव हैं,
आशावादी जो दृष्टिकोण दिखता है। जी जी।
तो ये होता है प्रभाव। पत्र बहुत लोग लिखते हैं लेकिन आप प्रभाव कितना जमाते हैं उस पत्र से। आपकी वाक्य संरचना कैसी है, शब्द का चयन कैसा है, या आप आपके विचार कितने सुंदर हैं, सब कुछ दिखाई देता है।
यानी कि अप्रत्यक्ष उपस्थिति अगर हम कहें सर, उसके माध्यम से हो जाती है व्यक्ति की,
निश्चित रूप से।
जी,
है ना। आज मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन पहले के जमाने में पत्र ही एकमात्र माध्यम था। आप किसी के साथ दूर हैं तो पत्र से ही पहुंच जाते थे आप। तो इसलिए शिक्षार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो हम देख लें कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं।
जी।
जो हम अपने से बड़ों को लिखते हैं, बराबर वालों को, मित्रों को लिखते हैं, या अपने से छोटों को लिखते हैं, तो उसमें कहने का अलग अलग ढंग होता है। जैसे संबोधन उसमें अलग होगा। अपने बड़ों को लिखेंगे तो पूज्य पिताजी, आदरणीय भाई साहब, इस तरह से लिखेंगे। बराबर वालों को मित्रवर, परम मित्र या नाम से लिखेंगे। छोटों को चिरंजीव या प्रिय करके लिखेंगे। अभिवादन में भी बदल जाएगा, पिताजी को लिए चरण स्पर्श प्रणाम होगा। बराबर वालों के लिए नमस्ते या नमस्कार होगा। और छोटों के लिए आशीर्वाद या शुभाशीष।
जी।
उसी तरह से अगर समाप्त करते हैं आप पत्र, तो वहां भी बदल जाएगा। बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी लिखेंगे, बराबर के लिए तुम्हारा मित्र लिखेंगे, और छोटों के लिए शुभ चिंतक, शुभेच्छु लिखेंगे। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए।
जी,
है ना। नहीं
जी।
तो आप पत्र में गलती करेंगे। आपके जो अध्ययन सामग्री है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप पढ़िए कि पिता को पत्र कैसे लिखा गया है, है ना। उसी तरह से बधाई पत्र भी होता है कि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं घर में, तो उसमें अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए लोगों को बधाई पत्र देते हैं। या मान लीजिए नव वर्ष होता है तो बधाई एक दूसरे से हम अभिव्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।
जी।
या किसी के यहाँ सफलता हुई हो तो आप उसकी सफलता के लिए बधाई देते हैं। तो ये भी बधाई पत्र एक बड़ा रूप है। अब हम देखें औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब है कि कामकाज में, सरकारी या कार्यालयों में जो प्रयोग होता है वो औपचारिक पत्र कहा जाता है। और इसका स्वरूप एकदम अलग होता है, है ना। इसमें जो इसका ढांचा होता है कि सबसे ऊपर दाहिनी तरफ आप तिथि लिखेंगे, फाइल संख्या लिखेंगे, और बाईं तरफ सेवा में जिसको पत्र भेज रहे हैं वो लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, फिर मुख्य भाग आएगा उसका, फिर नीचे भवदीय लिखेंगे। तो ये औपचारिक पत्र का एक विशेष रूप है जिसको शिक्षार्थियों को जानना चाहिए। औपचारिक पत्र में भी बहुत तरह के होते हैं। जिसका कि आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए, जैसे निमंत्रण पत्र है, है ना, संवेदना का पत्र है, कहीं कोई दुखद घटना हुई है, दीपावली पर शुभकामना किसी को आप देते हैं, उसका रूप क्या होगा। अब संक्षेप में थोड़ा देख लेते हैं हम कार्यालय पत्र।
ठीक
है ना,
बिल्कुल।
कार्यालय पत्र में कार्यालय में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने के लिए, या सभी जो आपके कर्मचारी हैं उन तक पहुंचाने के लिए कार्यालय पत्र लिखा जाता है
जी।
और उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, आवेदन पत्र, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। और इसके स्वरूप में अंतर होता है।
अच्छा,
इसका जो ढांचा होता है सबका अलग है, तो इसको शिक्षार्थी बहुत ध्यान से देखें, कि किन में क्या अंतर है, और यह भी जाने कि कार्यालय में जब आप पत्र लिखेंगे तो उस समय आपको आवेदन पत्र भी लिखना होगा। जैसे बहुत से बच्चे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उसका स्वरूप अलग होता है, तो आवेदन पत्र में किस तरह से अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताएंगे, अध्यापन अनुभव के बारे में बताएंगे
जी।
अपनी रुचियों के बारे में बताएंगे, तो उसका एक अलग स्वरूप होता है। तो इस तरह से पत्रों के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की और इसका अभ्यास करें,
अभ्यास करें। और जैसे कि आपने कहा सर, औपचारिक पत्र जो है इनकी चाहे हम आज कहें कोई भी माध्यम चुने, लेकिन जो उसका फॉर्मेट है वो कभी पुराना नहीं होगा, उससे परिचय आपका होना चाहिए और आपको जो है ये लेखन प्रक्रिया जाननी बहुत जरूरी है।